भागवत सार की श्रृंखला में 11वें स्कंद के 6ठे अध्याय पर चर्चा करेंगे। इसके पहले श्लोक को दोहराएंगे, कृपया आप सब दोहराएंगे। श्री शुक उवाच अथो ब्रह्मात्मज देवे प्रजयशैरावृतोऽभ्यगाद्भवश्च भूत भव्येशो ययो भूत गणैर्वृतः। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, तब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों तथा देवताओं एवं महान प्रजापतियों को साथ लेकर द्वारका के लिए रवाना हुए। सारे जीवों के कल्याण प्रदाता शिव जी भी अनेक भूत प्रेतों सहित द्वारका गए। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुदे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वति देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राभिपीयूष सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तो दिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेक बंधु मत्संगे मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाय अति नीचो चतः कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेम नारद कंठयो सुरा। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? तो छठा अध्याय है 11वें स्कंद का, जहां देवता ब्रह्मा जी आदि भगवान के पास गए हैं और फिर भगवान प्रभा क्षेत्र की ओर यदुवंशियों को लेकर जाएंगे। तो ये अध्याय है और पहले 6 श्लोकों में देवता भगवान के पास आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। 7वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक देवताओं की प्रार्थनाएं, भगवान के प्रति प्रार्थना अर्पण करते हैं और फिर 20वें श्लोक से लेकर करीब 30-31 श्लोक तक देव भगवान से ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि अब कार्य पूरा हुआ आपका, अब आप अपने धाम वापस जाइए। और फिर 31वें श्लोक से लेकर 40वें श्लोक तक भगवान वर्णन करते हैं प्रभा क्षेत्र में जाने का, प्रभा क्षेत्र का गुणगान करते हैं। और फिर 41वें श्लोक से आखिरी तक अध्याय के 50 श्लोक तक उद्धव जी भगवान के पास आकर उनसे कुछ प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे ये पूरा अध्याय बटा हुआ है। तो प्रारंभ अभी जैसे हम लोगों ने श्लोक पढ़ा, ब्रह्मा जी प्रारंभ कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी भगवान के पास जा रहे हैं सभी को लेकर। तो ब्रह्मा जी के साथ शिव जी चले, इंद्र चले, सारे देवता चले, मारुतगण चले, वसु चले, अश्विनी कुमार चले, जितने भी देवता हैं ये सब गंधर्व किन्नर चानर सब उनके साथ आए। क्यों? क्योंकि भगवान को देखना, भगवान के दर्शन करने। तो यह वर्णन है कि बड़े उत्सुक थे, आतुर थे भगवान के दर्शन के लिए। आचार्यगण समझाते कि ऐसा नहीं है कि देवताओं ने पहले कभी भगवान के दर्शन नहीं किए। भगवान मतलब भगवान के अवतारों के विस्तारों के दर्शन करते रहते विष्णु रूप के। स्वर्ग में स्वयं वामन देव है, वो तो वहीं विराजमान रहते हैं, तो वामन देव के दर्शन होते रहते हैं। लेकिन उनमें उत्साह आतुरता थी कि आज कृष्ण के दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान के, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के, विष्णु के नहीं, कोई अवतार के नहीं, कोई विस्तार के नहीं, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। इसलिए देवताओं में बड़ी आतुरता थी, सभी लोग गए। तो द्वारका पहुंचे, द्वारका पहुंचकर उन्होंने बड़े आराम से दर्शन किए। वर्णन किया गया है कि देवता आश्चर्य में थे। क्या आश्चर्य था देवताओं को? उनको आश्चर्य था कि जिन चरण कमलों की का ध्यान योगी अपने हृदय में करते हैं, या बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी जिनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, हम उनको साक्षात देख रहे हैं, उन भगवान को साक्षात देख रहे हैं। बड़े आश्चर्य में थे कि हमारा कितना भाग्य है कि हम उनको देख पा रहे हैं। तो वे लोग वहां से बहुत सुंदर फूलों की माला बनाकर लाए थे और ऐसा वर्णन है कि उन्होंने माला से पूरा ढक दिया, इतने फूल लाए थे भगवान के लिए कि माला से ढक दिया। जब भगवान का श्रृंगार किया जाए तो बहुत से फूल होने चाहिए, भगवान को फूलों से बहुत श्रृंगार किया जाता है। अलग अलग स्थानों पर जैसे जगन्नाथपुरी है, यहाँ हम देखते हैं ये भोग मंडप कहलाता है। भोग मंडप मतलब जहाँ भगवान को भोग लगाया जाता है बहुत ज्यादा, 56 भोग चलता रहता आते रहते, तो ये भोग मंडप कहलाता है। और जो तिरुपति है ये पुष्प मंडप कहलाता है। आप देखिए तिरुपति में भगवान को इतने फूल, इतनी मोटी मोटी मालाएं भगवान को पहनाई जाती है, अलग अलग रंग के, रंग बिरंगे फूल तो पुष्प मंडप कहलाता है, क्योंकि वहां भगवान का श्रृंगार पुष्पों से बहुत किया जाता है। तो देवता भी पुष्प लेकर आए और उन्होंने पुष्पों को समर्पित किया भगवान को। भगवान ने उनको अपने वक्ष स्थल पर धारण किया और ऐसे वर्णन है कि ढक गए पूरे भगवान, इतने फूल ले आए देवता। और फिर जब ऐसे उन्होंने दर्शन कर लिए तो देवताओं ने प्रार्थना करनी प्रारंभ की भगवान से। भगवान को देखकर उन्होंने प्रार्थना की और उन्होंने भगवान से कहा, भगवान श्री कृष्ण से, कि आप सृष्टि करता है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं देवता कि हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपके चरण कमलों में प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने सारे देवताओं ने साष्टांग प्रणाम किया भगवान को। साष्टांग मतलब आठ अंग पृथ्वी पर लगने चाहिए, पृथ्वी पर होते हैं, या साष्टांग प्रणाम में आठ अंग उपयोग होते हैं। सो हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, घुटने हैं, वक्षस्थल है, और फिर हमारा मस्तक है, हमारी आंखें हैं, और हमारी बोलने की शक्ति है। इस आठ अंग अष्टांग प्रणाम कहा जाता है, या साष्टांग, स अष्ट अंग साष्टांग प्रणाम। तो उन्होंने प्रणाम किया सभी देवताओं ने और फिर प्रार्थना करने लगे कि आपके चरण कमलों में हमारा प्रणाम है, आप सृष्टि करता है, आप ही पालन करते हैं और आप ही संहार करते हैं। भगवान ये सीधे नहीं करते हैं, महाविष्णु के द्वारा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ही संहार करते हैं, आप ही पालन करते हैं, और फिर भी आप इनसे परे हैं, आप स्पर्श नहीं करते। तो यह देवता बता रहे हैं कि दरअसल महाविष्णु जो ये कार्य करते हैं तो भगवान सीधे कार्य नहीं करते, वो उनसे परे है, स्पर्श नहीं करते। आचार्यगण समझाते हैं कि भगवान बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है उनके पास ये सब आकर सृष्टि की रचना करें, ये सब करें, बहुत व्यस्त हैं। किसमें? गाय चराने में, अपने मित्रों के साथ आनंद लेने में, गोपियों के साथ लीला करने में, जंगल में, वन में, वृंदावन में घूमने में, गायों के पीछे पीछे जाने में। जैसे गोपियां कहती हैं, त्रिन चरानुगम श्रीनिकेतनम। तो कहते बहुत व्यस्त है, समय नहीं है उनके पास, इसीलिए महाविष्णु को ये कार्य उन्होंने दे दिया कि आप करो। और भगवान कभी भी भौतिक स्तर पर नहीं आते, इस जगत में भी आते हैं तो वो वही करते हैं जो वृंदावन में कर रहे हैं, गोलोक वृंदावन में लीलाएं करते हैं। तो ऐसे देवताओं ने प्रार्थना की और फिर देवता कहते हैं कि कई लोग शुद्ध होने का प्रयास करते हैं, वेद शास्त्र पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, तपस्याएं करते हैं, दान देते हैं, बहुत सी ऐसी क्रियाएं करते हैं, लेकिन वे शुद्ध नहीं हो पाते। कौन व्यक्ति शुद्ध हो जाता है? जिसको श्रद्धा है। तो देखिए, कई बार हम लोग अन्य लोगों की तपस्याओं से बड़े प्रभावित हो जाते हैं कि अरे फला फला धर्म में या फला फला स्थान पर वो व्यक्ति इतनी तपस्या कर रहे हैं, वो वस्त्र नहीं पहनते हैं, शेविंग नहीं करते हैं, वो केवल पानी पीकर जीते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग सुनते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि कितनी वो तपस्या कर रहे हैं और हम लोग खा पी कर मजे में हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसा लगता है कि तपस्या तो वो है, भगवान को तो वो प्राप्त करेंगे। तो यहाँ देवता कहते हैं कि लोग कितनी भी तपस्या कर लें, कितने वेद अध्ययन कर लें, कितना दान दे दें, कितने व्रतों का पालन कर लें, आपको प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? श्रद्धा अगर नहीं है। हाँ, वही सब चीज करते हुए अगर श्रद्धा है तो निश्चित भगवान को प्राप्त करेंगे, लेकिन श्रद्धा विहीन व्यक्ति इन चीजों से प्राप्त नहीं कर सकते। तो देवता समझा रहे हैं कि श्रद्धा को मजबूत कीजिए। जब हम भक्ति में आते हैं तो श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। पहला, वो श्रद्धा जो आपको भक्तों के संग तक ले आती है। कई भक्त, कई लोग होते हैं जो भक्तों के संग में आ जाते हैं, तो उनमें श्रद्धा है, तो सुनना चाहते हैं, भगवान के विषय में जानना चाहते हैं, तो ऐसी श्रद्धा केवल आपको भक्तों के संग तक लाती है। दूसरी श्रद्धा होती है कि जहां व्यक्ति शास्त्रों को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाता, लेकिन उसको श्रद्धा होती है, विश्वास होता है कि जो भी शास्त्र में कहा गया है, जो भी भक्ति का मार्ग है, वो सही है, गलती नहीं है, कोई संशय नहीं। और तीसरे प्रकार की श्रद्धा जहां उसका विश्वास भी बड़ा मजबूत होता है और शास्त्रों में भी बहुत अच्छा ज्ञान होता है। जय श्री शिव नटराज दयालिताय की जय। तो उसको शास्त्रों में भी बहुत ज्ञान होता है और ऐसा उसके आधार पर श्रद्धा होती है। तो श्रद्धा इसको मजबूत कैसे करना चाहिए? हम सब में श्रद्धा है, हम आ जाते हैं भक्तों के संग में आ जाते हैं, तो क्या इतना बहुत है? नहीं। श्रद्धा ये कोई एक समय का कार्य नहीं है कि बस अब मेरी श्रद्धा हो गई, अब मैं आ गया, खत्म। श्रद्धा हर रोज बढ़ानी है, हर रोज श्रद्धा है, बढ़ाना चाहिए, कार्य करना चाहिए उसके लिए। तो कैसे श्रद्धा बढ़ा सकते हैं? श्रद्धा ज्ञान से बढ़ती है, और श्रद्धा और ज्ञान ये शुद्धता से बढ़ता है। अगर हमारे अंदर शुद्धता नहीं है तो हम ना तो ज्ञान को स्वीकार कर पाएंगे और ना ही श्रद्धा को बढ़ा पाएंगे। तो निश्चित श्रद्धा बढ़ाने के लिए ज्ञान चाहिए, लेकिन ज्ञान को स्वीकार करने के लिए शुद्धता चाहिए। इसीलिए अगर हमें श्रद्धा बढ़ानी है तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि क्या हम एक शुद्ध जीवन जी रहे हैं या नहीं। सारे अशुद्ध कार्य करते हुए, अशुभ कार्य करते हुए हम श्रद्धा को बढ़ा नहीं सकते, चाहे कितना ही आप प्रयास कर लीजिए। तो देखना है कि क्या हमारे सारे कार्य शुद्ध हैं, हमें शुद्धि की ओर ले जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं शुद्ध जीवन जीने का। और शुद्ध जीवन कब जीना है? जब केवल इस्कॉन में आए एक दिन शुद्ध जीवन जीना है, फिर बाहर जाकर सारा गलत कार्य, या बस एक बार आ गए, अब हम इस्कॉन के भक्त हो गए, अब हमारा जीवन शुद्ध है? नहीं। ये जो माया जगत है, ये हमें अशुद्धि की ओर खींचने के लिए है। आप जब इस जगत में रहते तो बहुत सारी चीजें खींचती हैं, तो हर रोज हर समय अपने आप को बचाना है, शुद्ध जीवन जीना। तो श्रद्धा बढ़ती है जब हम ज्ञान लेते हैं, शुद्ध जीवन जीते हैं। श्रद्धा बढ़ती है जब हम बड़ी गंभीरता से भक्ति के मार्ग का पालन करते हैं। श्रद्धा बढ़ती है जब हम बहुत उत्साही भक्तों के साथ रहते हैं। अब ऐसे भक्तों के साथ रहिए जिनको कोई रुचि ही नहीं है कुछ करने की, श्रद्धा कहां से बढ़ेगी? लेकिन जब हम देखते हैं कि भक्त बड़े उत्साह से कीर्तन कर रहे हैं, बड़े उत्साह से सेवा कर रहे हैं, उत्साह से श्रवण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, श्रद्धा बढ़ जाती है। तो श्रद्धा ज्ञान से बढ़ती है, श्रद्धा शुद्ध जीवन से बढ़ती है, श्रद्धा बड़ी गंभीरता से भक्ति का पालन करने से बढ़ती है, और श्रद्धा उत्साही भक्तों, ये जो उत्साह है ये छुआछूत की बीमारी की तरह है, या कहना चाहिए आजकल के समय में कोविड की तरह है। कोविड हो जाए तो बस वो क्या, दो गज दूरी रखनी पड़ती है ताकि ये फैले नहीं। तो उत्साह क्या है, ये दो गज दूरी से भी नहीं चलता। आप मंदिर में है, बहुत बड़ा मंदिर हॉल है, बस दूर से भक्तों को देख रहे हैं, बीमारी फैल जाएगी। तो श्रद्धा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि यहां देवता कह रहे हैं एक ही चीज आपको बचा सकती है, और वो है दृढ़ श्रद्धा। उसको हमें उत्पन्न करना चाहिए अपने जीवन में। तो इसके बाद देवता कहते हैं, जब उन्होंने श्रद्धा की बात कर दी, अब वो कहते हैं भगवान के चरण कमलों के ओर प्रार्थना करते हैं। तो कहते हैं कि आपके चरण कमल ये महान महान जितने भी ऋषि मुनि हैं उनके द्वारा भी आराध्य हैं आपके चरण कमल। और जो लोग मुक्ति की कामना करते हैं वो दिन में 3 बार आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, यशस्त्री संभ्यम, तो दिन में 3 बार नियम से वो आपके चरणों का ध्यान करते हैं। और आपके चरण कैसे हैं? अग्नि की तरह है, वो कहते हैं अग्नि की तरह है, जो जितने भी अशुभ इच्छाएं जीव के हृदय में हैं उसको जला देते हैं, ये आपके चरण कमल। देखिए हमारे हृदय में बहुत सी अशुभ इच्छाएं, अशुभ और शुभ क्या होता है, ऐसी सारी चीजें जो भगवान की भक्ति के विरुद्ध है अशुभ, चाहे उसको इस जगत में शुभ माना जाए, अच्छा माना जाए, महान माना जाए, भगवान से दूर ले जा रही है अशुभ। तो वो कहते हैं कि ऐसी सारी इच्छाओं को जला देते हैं भगवान के चरण कमल। श्रील प्रभुपाद एक पत्र में बहुत सुंदर बात लिखते हैं, वो लिखते हैं कि ये जो जगत है इसमें हमारा कार्य बड़ा कठिन है, हमने माया के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है, और सही भी है ना, बाकी लोग आपस में युद्ध कर लेते हैं, कोई देश युद्ध कर लेता है, लेकिन हमें हमारा हम सबका जो एक शत्रु है, देखिए अगर दो देश लड़ रहे हैं तो उनमें से एक हमारा शत्रु हो सकता है, दूसरा नहीं होगा, मित्र होगा, या फिर अगर हम किसी और चीज को शत्रु मानते हैं, तो इस जगत में ये शत्रु और मित्र की भावना ये किस पर आधारित है, अपनी इंद्रिय तृप्ति पर। अगर कोई मेरी इंद्रिय तृप्ति में सहायता करता है तो मेरा मित्र है, नहीं तो शत्रु है। लेकिन इस जगत में हम लोग जितने भी लोग हैं उन सबका एक कॉमन शत्रु है, वो सबके लिए शत्रु है, और वो है माया। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा कार्य लिया है, कार्य हमने अपने सर पर ले लिया है, क्या, माया से युद्ध छेड़ दिया। तो इसीलिए अगर हम भगवान के चरण कमलों को दृढ़ता से पकड़े रहेंगे तो फिर हम बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो इस युद्ध में गला कट जाएगा। तो इसलिए भगवान के चरण कमलों को हमें पकड़े रहना चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान के चरण कमलों को पकड़े रहते हैं तो क्या होता है, देखिए इस जगत में सर्प है, हमारी जो इंद्रियां हैं उनकी तुलना सर्पों से की गई, सांप क्या होता है, डसता, किसी को भी डस देता, सांप एक द्वेषी प्राणी माना गया, देखते ही डस देगा, तो सांप जिसको भी डसता है जहां भी रहता है वो अपना जहर छोड़ता है। तो अभी इंद्रियां हैं हमारे पास हैं तो इंद्रियों की तुलना सर्पों से की, वो जहर छोड़ेंगी ही, क्या किया जा सकता है। सांप हर जगह जाता है और अपना जहर छोड़ देता है, ये कहीं पर अगर डस दे तो वो स्थान, वो व्यक्ति जहरीला हो जाता है, उसमें जहर फैल जाता है। लेकिन एक बात और है, चंदन का वृक्ष होता है, उस चंदन के वृक्ष में बहुत से सांप रहते हैं, आप लोगों ने कभी देखा है चंदन का वृक्ष, कभी कभी तो इतने सांप होते हैं दूर से काला दिखाई देता है, चंदन के वृक्ष में सांप लिपटे हुए होते हैं, लेकिन चंदन की सुगंध में कोई कमी नहीं आती, ना ही वो काला पड़ जाता सांपों के रहने से, क्यों, क्योंकि चंदन ने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया, इतना सुगंधित बना लिया है कि सर्पों का कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्त को इस तरह होना चाहिए। तो भक्तों को क्या करना चाहिए, भक्तों को अपने आप को चंदन बनाना चाहिए, अर्थात भक्ति के द्वारा इतने जीवन को सुगंधित बना लीजिए, भगवान के जो चरण कमल हैं उनसे जो सुगंध निकलती है। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है कि जब 4 कुमार वैकुंठ पहुंचे, उन्होंने श्राप दे दिया जय विजय को, भगवान आए और जैसे ही भगवान आए उन्होंने प्रणाम किया और चरण कमलों से जो उनके तुलसी भगवान के लगी थी वो सुगंध उन्होंने ली, बस उसी से वो भक्त बनता है। तो भगवान के चरण कमलों की सुगंध अगर हम ऐसे चंदन बन जाएं जिससे श्री कृष्ण के चरण कमलों की सुगंध आए, तो फिर जहां भी जाएंगे, श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए, कितने सारे सांप हैं वहां पर, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ। प्रभुपाद चंदन के वृक्ष की तरह, कई लोगों ने प्रयास किया उनके आंदोलन को रोकने का, उनको रोकने का, उनका विरोध करना, कोई फर्क नहीं। इसलिए चंदन बन जाएंगे, इतनी सुगंध होनी चाहिए कि ये सांप जो ये इंद्रियां हैं इनका कोई प्रभाव ना हो। तो ये भगवान के चरण कमल हैं जिनको देवी देवता इस समय देख रहे थे। आचार्यगण समझाते हैं कि इस जगत में बहुत तेज लहरें आ रही हैं इंद्रिय तृप्ति की, तो लहरों से अगर बचना है, मान लीजिए आप कहीं पर हैं, लहरें बड़ी तेज आ रही है, क्या करना चाहिए, पानी में है, तो व्यक्ति क्या करता है, कोई पत्थर या कोई रॉक होता है उसको पकड़ लेता है, उसको पकड़े रहता है, बस उसके बाद बहुत तेज पानी आता भी रहे तो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसने मजबूती से पकड़ा। हमें खुद अनुभव है, एक बार हम गंगा में फंस गए थे बड़े तेज बहाव में, मायापुर गए थे तो गंगा जी हैं तो वहां पर बीच में वो लोग कुछ ड्रम्स लगा के रखते हैं, हरे रंग के ऐसे ड्रम्स होते हैं प्लस जो फ्लोट करते रहते हैं, वो केवल ये दिखाने के लिए है कि इसके परे बोट भी नहीं जाए, बहुत तेज बहाव होता है। तो गंगा जी बहुत चौड़ी है वहां, तो आधा तो इतना कोई प्रभाव नहीं है, प्रवाह उनका तेज नहीं है, लेकिन जैसे ही उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे बड़ी तेज बहती है वहां पर, अचानक बड़ा गहरा बहुत तेज प्रवाह है। हम लोग उस समय क्या होता है जब स्विमिंग करते हैं तो बड़ा जोश आ जाता है कि नहीं इधर से उधर जाएंगे, तो वो जो ग्रीन था वो भी ध्यान नहीं दिया, क्रॉस कर गए और अकेले थे तो क्रॉस कर गए और वहां जाकर फंस गए, बड़ा तेज प्रवाह ऐसा कि हम सारे स्ट्रोक ट्राई कर रहे थे, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक, ये स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, कुछ नहीं चल रहा था, इतना तेज प्रवाह था वहां पर। और बस ऐसा लगा कि चलो अच्छा है, मायापुर है, गंगा है और शायद अब जल्दी हार पहनाने वाले हैं लोग। सो उस समय सोचा क्या करें क्या करें, इधर तो हमें वो ड्रम दिखाई दिया, तो फिर किसी तरह उस तरफ गए और उसको पकड़ लिया, बस अब उसको पकड़ लिया था, फिर प्रवाह उतना ही तेज था, बह रहा था, लेकिन फिर हम बच गए। फिर एक बोट आई, उसको बुलाया, आवाज दे के बोट आया, फिर उसमें बैठकर गए वापस। तो ये भवसागर में भी ऐसे लहरें किसकी आती रहती है, बड़ा तेज प्रवाह इंद्रिय तृप्ति का आता है, बस अब कर ले कर ले कर ले। तो अगर बड़ी मजबूती से कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ा है तो प्रवाह आता जाएगा, चलती जाएगी, आपको कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इसलिए बड़ी मजबूती से हमें भगवान के चरणों को पकड़ कर रखना चाहिए। और कैसे मजबूती से पकड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रभुपाद समझाते हैं, अगर हम भगवान के नाम का जप गंभीरता से कर रहे हैं, ये भगवान के चरण कमलों को मजबूती से पकड़ने लायक है, पकड़ने का तरीका है कि हम भगवान के नाम का जप करें। दूसरा, नियमों का कड़ाई से पालन करें। कितनी कड़ाई से हमें नियमों का पालन करना चाहिए ये सोचकर, जितनी मजबूती से आप पत्थर को पकड़ोगे या उस वो डूब रहे हो, बहाव तेज है, तो जब आप कितनी मजबूती से उस ड्रम को पकड़ोगे, उस मजबूती से हमें, उस कड़ाई से हमें नियमों का पालन करना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। तो इसलिए ये चरण कमलों को पकड़ना है। भक्त को रस ग्रह बनना चाहिए। रस ग्रह मतलब जो रस को ग्रहण करते हैं, सार को ग्रहण करते हैं, भगवान के चरण कमलों के स्वाद को ग्रहण करते हैं समर्पण के द्वारा। तो हमें भगवान के चरण कमलों की मधुरता को स्वाद लेना चाहिए, रस ग्रह बनना चाहिए। और जब हम भगवान के चरण कमलों को पकड़ लेते हैं, समर्पण करते हैं, तो क्या प्रभाव होता है? तो प्रभाव, पहला प्रभाव होता है कि जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, जो आकर्षण है इस जगत के वो हमें आकर्षित नहीं करते। देखिए जब तक हम इस जगत में हैं कहीं ना कहीं आकर्षण बना रहता है, तो अगर श्री कृष्ण के चरण कमलों को बड़ी मजबूती से पकड़ा है तो कोई आकर्षण प्रभावी नहीं होगा। दूसरा प्रभाव अकुतो भयम्। इस जगत में जब तक व्यक्ति रहता है भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है। अकुतो भयम्, अकुतो भयम मतलब भगवान के चरण कमल पकड़े तो कोई भय नहीं रह गया। और इतना ही नहीं, जितनी भी इंद्रिय तृप्ति की कामना है, जो इंद्रियां हमें तकलीफ देती रहती हैं, इंद्रिय संयम बड़ा सरल हो जाता है। ये भगवान के चरण कमलों को मजबूती से पकड़ने का प्रभाव है। भगवान के चरण कमलों में बहुत मधुरता है। भगवान भी अपने चरण कमलों की मधुरता को स्वाद लेना चाहते हैं, इसीलिए अपने पांव के अंगूठे को अपने मुंह में डाल लेते हैं देखने के लिए कि क्या मधुरता है। सब भक्त कहते हैं बड़ा मधुर है, बड़ा मधुर है, हनी है, मधु है, मुझे भी टेस्ट करना है। तो भगवान पत्ते पर लेट जाते हैं और अपने ही अंगूठे को, पांव के अंगूठे को लेकर अपने ही मुंह में डाल रहे हैं कि देखो क्या स्वाद है। और इसको ही बिल्वा मंगल ठाकुर लिखते हैं, करारविंदे न परारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गोविंद दामोदर माधवेति स्तोत्र में प्रारंभ करते हैं इसी इसी दृश्य को देखते हुए कि भगवान वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् लेटे हुए हैं छोटे से बालक, इसलिए भगवान का नाम है वटपत्र शाही। कि वटस्य पत्र से, वटपत्र में लेटे हैं और क्या कर रहे हैं, करार विंदे अपने पैरों अपने हाथों से उन्होंने अपने पांव को लेकर मुख में डाल दिया। भगवान भी स्वाद लेना चाहते हैं। तो ऐसे ये भगवान के चरण कमलों का वर्णन देवता कर रहे हैं और फिर वो कहते हैं, बहुत नम्रता से देवता कहते हैं कि भगवान आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आपने हमारे द्वारा हम लोग ये फूल लेकर आए हैं, ये जो माला लेकर आए हैं, आपने अपने वक्ष स्थल पर इसको धारण किया है, हमें लग रहा है कि लक्ष्मी देवी कहीं नाराज ना हो जाए। देवता कह रहे, घबरा रहे हैं, कह रहे आपने इतना कर लिया, हम तो बहुत हमें आशा नहीं थी कि आप ऐसा करेंगे, लेकिन आपने इतना बड़ा, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन डर भी लग रहा है कि कहीं लक्ष्मी देवी नाराज ना हो जाए, उनका स्थान है वक्षस्थल और आपने यहाँ हमारे द्वारा लाए गए फूलों को धारण कर लिया, तो हो सकता है कि लक्ष्मी देवी को थोड़ा सा क्या कहते हैं कि द्वेष हो जाए या थोड़ा सा अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी आपने किया है तो इसलिए आपके चरणों में प्रणाम है। आपके चरण वो है जो इस ब्रह्मांड में गंगा को लेकर आए हैं, गंगा जी का प्रवेश कराया उन्होंने, तो इसलिए वो चरण कमलों को प्रणाम करते हैं और फिर कहते हैं कि आप परम नियंता, सब कुछ आपके नियंत्रण में है, ये जगत सारा आपके नियंत्रण में है, और तो और ये ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक ये सब संघर्ष कर रहे हैं इस जगत में, क्योंकि सारे नियंत्रित हैं काल के द्वारा। इसीलिए बताया गया है ब्रह्मस्तंभ पर्यन्तं सर्वमायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामेव केवलम्। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामेव केवलम्। और बाकी सब ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्व माया मयम जगत। देवता कह रहे कि वे सब नियंत्रित है काल के द्वारा। और फिर वो कहते हैं महाविष्णु जो इसकी सृष्टि करते हैं वो भी आपसे शक्ति प्राप्त करते हैं। देखिए कई बार लोगों के मन में ये धारणा होती है कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं और सारे ही विष्णु से आते हैं, कृष्ण भी एक अवतार हैं। देवता यहाँ बहुत स्पष्ट कर रहे हैं, जो लोग ये बात सोचते हैं उनको देवताओं की प्रार्थना दिखानी चाहिए। क्या कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, देवताओं में कौन कौन है, ब्रह्मा जी, शिव जी, गंधर्व, किन्नर सब खड़े हैं और वो सब कह रहे हैं कि महाविष्णु को आपसे शक्ति मिलती है। आप महाविष्णु से नहीं आते हैं, आप महाविष्णु को शक्ति देते हैं जिससे महाविष्णु ये रचना कर पाते हैं। और आप ऋषिकेश हैं, सारी इंद्रियों के स्वामी हैं, और सारी इंद्रियों के स्वामी होते हुए भी विचलित नहीं होते आप इंद्रिय से। और उदाहरण दे रहे हैं कि आपने 16,108 पत्नियां हैं, लेकिन आपको कोई, आपके मन को वो विचलित नहीं कर पा रहे हैं। 16,108 पत्नियां, कभी कभी जब हम श्रद्धा की बात कर रहे थे तो कोई जो नए व्यक्ति आते हैं कभी सुनते हैं तो उनको कहा जाता है हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, थोड़ा विश्वास हो जाता है, श्रद्धा हो जाती है। फिर कहा जाता है कि जगत भगवान बना है, भगवान चला रहे हैं, विश्वास हो जाता है। फिर हम कहते हैं श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, तो थोड़ा सा संशय हो जाता है, ये क्या 16,108 पत्नियां, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये श्रद्धा थोड़ी सी वहां पर, तो थोड़ी बहुत श्रद्धा हो लेकिन ये नहीं। प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा था कि आपको विश्वास है कि कृष्ण के ऐसे बाहर किसी, कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी। प्रभुपाद ने कहा क्यों नहीं विश्वास, हमें तो हर चीज पर विश्वास है, पूरा विश्वास है। मतलब उसमें विश्वास ना करने लायक चीज ही क्या है अगर कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी। तो ऐसे वे कहते हैं, और फिर वो कह रहे हैं कि इस जगत में जितनी भी बद्धता है उसको समाप्त किया जा सकता है दो चीजों से, आपकी कथा और आपके चरणों का धोया हुआ जल, या आपके चरणों से निकला हुआ जल, ये दोनों जीव को शुद्ध कर सकते हैं। तो इसके बाद ब्रह्मा जी भगवान के निकट गए और उन्होंने भगवान से कहा कि आप पूर्व काल में मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि आइए पृथ्वी का भार कम कीजिए, और हमारी प्रार्थना को सुनकर आप आए, बहुत आभारी हैं। और अब आपने 125 वर्ष, ब्रह्मा जी कहते हैं, यहां रहकर आपने जो भी कार्य करना था संपन्न कर दिया, पृथ्वी का भार कम कर दिया, असुरों को मार दिया, जिस कार्य के लिए आप आए थे आप कर चुके हैं। अब अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपने धाम वापस जा सकते हैं। हम जब ये पढ़ रहे थे हमारे मन में आ रहा था कि ब्रह्मा जी ऐसे क्यों कर रहे हैं, आपके घर कोई आए हैं, आपने बड़े बड़े उत्साह से बुलाया है, आइए हमारे घर आइए, और अब आप उनको बोल रहे हैं कि अच्छा जाइए, और वो भी भगवान को ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ये कैसे बोल सकते हैं। आने के लिए तो ठीक है बोला, जाने के लिए बोल रहे कि अब आप चाहें, आपकी इच्छा हो। हाँ, बड़ी नम्रता से उन्होंने कहा कि आपकी इच्छा हो तो आप वापस जाइए धाम में। तो प्रश्न ये आ रहा था हमारे मन में कि ब्रह्मा जी ऐसा क्यों कह रहे, वापस जाने के लिए क्यों कहा, उनको तो भक्तों को तो कहना चाहिए कि आप यहीं रहिए, आपके रोज हम दर्शन करेंगे, चलिए हमारे धाम चलिए, या थोड़ा स्वर्ग में आइए, कुछ करिए और रुकिए यहाँ पर, भगवान को तो रोकना चाहेंगे। और ब्रह्मा जी कह रहे कि आप जाइए, काम हो गया आपका, क्यों? कारण पहला, ब्रह्मा जी अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं कि उन्होंने बुलाया था, भगवान उनके कहने पर आए हैं, तो उनका कर्तव्य बनता है कि ये कहना कि बहुत धन्यवाद, आपने कार्य पूरा कर दिया, अब आपकी इच्छा हो तो आप जा सकते। अर्थात ब्रह्मा जी अपना कर्तव्य कर रहे हैं कि हमारा कर्तव्य, हमने बुलाया था हमारे काम के लिए, अब हम नहीं रख सकते आपको ज्यादा समय, क्योंकि हम जानते हैं कि कई और लोग चाहते हैं कि आप वहां जाएं, और अगर हम आपको पकड़ कर रखेंगे तो फिर ये अन्यों के लिए सही नहीं होगा। ये एक भक्त की भावना है। श्रील प्रभुपाद अगर चाहते तो पूरा समय अपना वृंदावन में रह सकते थे कृष्ण को पकड़कर, कि बस मैं और आप, और वही है कृष्ण है वृंदावन में, कृष्ण के संग में थे, क्या आवश्यकता थी अमेरिका जाने की, क्योंकि वो कृष्ण को ले जाकर अन्यों को देना चाहते थे कि नहीं नहीं मैं केवल नहीं रखना चाहता, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। ब्रह्मा जी का ये भाव है कि मैं आपको यहां नहीं बनाए रखना चाहता हूं, बाकी लोग भी हैं, अब आप उनका उद्धार कीजिए। तो इस भाव में ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की के बाद चाहें तो आप जा सकते। तो जब ब्रह्मा जी ने ऐसी प्रार्थना की तो भगवान ने उनसे कहा कि हाँ, मैं बहुत समय से सोच रहा था कि सारा समाप्त हो गया, लेकिन ये यदुवंशियों का अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब ब्राह्मणों के श्राप से वो भी प्रारंभ हो गया है। बहुत जल्द यदुवंशी वो वापस जाएंगे इस धरती को छोड़कर, और फिर मैं भी जाऊंगा अपने धाम, और जाते जाते तुम्हारे स्थान पर आऊंगा। ब्रह्मा जी को कहा भगवान ने, जाते जाते ब्रह्मलोक को कट जाऊंगा, जब मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, अपने धाम जा रहा हूँ, होते हुए जाऊंगा, चिंता नहीं करना। तो ब्रह्मा जी बहुत खुश हो गए, यहाँ भगवान आएंगे। और फिर भगवान ने कहा कि ठीक है, तो ये सब जब भगवान ने कहा तो फिर सारे देवता प्रार्थना करके चले गए। उसके बाद उद्धव जी आए भगवान के पास। उद्धव जी आकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं देख रहा हूं, उद्धव जी के पहले भगवान ने देवताओं यदुवंशियों से कहा, बुलाया सबको, तब उद्धव जी को पता चला, यदुवंशियों को बुलाया कि देखिए ब्राह्मणों ने हमें श्राप दिया है और उनके श्राप तो निश्चित पूरा होगा, तो ऐसा करते हैं हम लोग सब द्वारका छोड़कर अब प्रभास क्षेत्र चलते हैं। तो प्रभास क्षेत्र क्यों? तो भगवान कहते हैं कि पूर्व काल में चंद्रमा को भी श्राप मिला था और उसने आकर प्रभास में स्नान किया था और वो श्राप से मुक्त हो गया था। भगवान स्वयं गुणगान कर रहे हैं प्रभास क्षेत्र का, कि ये वो क्षेत्र है जहां पर दान करने से, स्नान करने से, पूजा करने से निश्चित व्यक्ति मुक्त हो सकता है, तो इसलिए हम सबको वहां चलना चाहिए। तो यदुवंशियों ने स्वीकार किया। तो जब उद्धव ने ये सुना तो भागे भागे आए कृष्ण के पास और उन्होंने कहा कि आपने ब्राह्मणों का श्राप स्वीकार किया, उसको नकारा नहीं, इसका अर्थ है कि आप भी अब वापस जाने वाले। तो यहां उद्धव बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि भगवान को कोई श्राप कार्य नहीं करता। कई लोग ऐसे भारत में भी कई मूर्ख हैं जो कहते हैं कि अरे कृष्ण भगवान है, कैसे भगवान है, अपने परिवार को मिला श्राप तो वो दूर कर नहीं सके, उसके कारण सारे मर गए, तो फिर कैसे भगवान है, ऐसे मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं। तो यहाँ उद्धव की ये बात, उनको ये भागवत दिखाना चाहिए। उद्धव कहते हैं कि आपने स्वीकार कर लिया, आपने उसको नकारा नहीं, आप चाहें तो उसको हटा सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, इसका कारण है कि आप वापस जाने वाले। और उद्धव ने कहा कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आपके चरणों का, चरण कमलों का आश्रय मैंने लिया है, उनके बिना मेरा जीवन संभव ही नहीं है। और वो कहते हैं कि होंगे बड़े बड़े योगी तपस्वी आपकी पूजा करने वाले, लेकिन हम आपके चरण कमलों के प्रति समर्पित है, और हमारा आनंद क्या है, आपने जो हार पहना है उसको धारण करना, आपने जो खाया है उच्चिष्ट है उसको ग्रहण करना, आपको जो अर्पण किए गए फूल हैं उसको सूंघना, ये हमारा आनंद है। और योगियों तपस्वियों को जो चाहिए करने दीजिए, हमें कोई चिंता नहीं है, हमारे लिए ये आनंद है आपके चरण कमलों की सेवा करना व्यक्तिगत रूप से, इसलिए आप मुझे अपने साथ ले चलिए, आप जाएंगे अपने साथ ले चलिए। बड़ी सुंदर बात उद्धव यहां बताते हैं कि भक्त भगवान के धाम क्यों जाना चाहता, भक्त भगवान के धाम जाना चाहता है ताकि उनकी व्यक्तिगत सेवा कर सके, और कोई कारण नहीं, सेवा। तो उद्धव ने प्रार्थना की कि आप भी मुझे ले चलिए, साथ में ले चलिए। तो उस समय भगवान ने उद्धव से कहा कि ठीक है, जो तुम कह रहे हो ये सही है, अब मैंने योजना बना ली, आज से सातवें दिन सारे यदुवंशी समाप्त हो जाएंगे, ब्राह्मणों के श्राप के कारण ये होगा ही, तो वे लोग चले जाएंगे और फिर मैं भी नहीं रहूंगा, मैं भी वापस जाऊंगा। और अब उद्धव ने कहा था मुझे ले चलिए, उन्होंने कहा तुम भी यहां नहीं रहना, तो फिर कहां रहना, यहां नहीं रहना तो कहां चलना मेरे साथ, या कहां जाना, या क्या करना है तुम्हें। तो ये अब भगवान अगले अध्याय से उद्धव को बताना प्रारंभ करते हैं, जिसको उद्धव गीता कहते हैं। तो अगले अध्याय से उद्धव गीता प्रारंभ होगी, ये कई अध्यायों तक है, सातवें अध्याय से लेकर प्राय 23वें अध्याय तक चलेगी। ये उद्धव गीता बहुत सुंदर ज्ञान भगवान देने वाले हैं उद्धव को, जो भगवत गीता में अर्जुन को सिद्धांतों के रूप में दिया उसको व्यवहारिक रूप में कथाओं के द्वारा, पिंगला की कथा, अवंती ब्राह्मण की कथा, इस सारी कथाओं के द्वारा उनको सिखलाएंगे। तो ये उद्धव गीता में अब भगवान विग्रह सेवा बहुत महत्वपूर्ण वर्णन है, पूरा अध्याय कैसे विग्रह सेवा करनी चाहिए, तो ये सारी चीजें भगवान सिखलाएंगे। उद्धव गीता एक दृष्टि से बहुत दार्शनिक स्तर पर है, लेकिन दूसरी दृष्टि से बड़े व्यवहारिक तौर पर हमारे रोज के जीवन में बहुत सी चीजें समझने के लिए हैं। सो अब आगे इसका वर्णन अगले अध्याय से होगा, उद्धव गीता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम।